लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कलीसियाई समुदाय उन युवा लोगों की इच्छाओं और आशंकाओं का स्वागत करें जो पौरोहित्य और धार्मिक जीवन में यीशु मसीह के मिशन की सेवा करने की बुलाहट महसूस करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत रोम के ऐतिहासिक स्थल कोलोसियम के इतिहास पर एक लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। जुबली वर्ष में रोम के विभिन्न ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों को जानने के क्रम में आज हम कोलोसियम के बारे जानेंगे। हर साल गुड फ्राइडे के दिन ख्रिस्ती विश्वासी यहां भारी संख्या में क्रूस रास्ता में भाग लेकर प्रभु यीशु के दुख भोग की याद करते हैं। क्रूस रास्ता का नेतृत्व स्वयं संत पापा करते हैं। तो आइए आज हम कोलोसियम के इतिहास के बारे जानें और यह भी जानने का प्रयास करें कि यह ख्रिस्तियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। कोलोसियम रोम का एक विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। अगर हम इसके इतिहास को जानने का प्रयास करें तो कहा जाता है कि यह एक विशाल स्टेडियम था जिसमें करीब 50,000 दर्शक समाते थे, जो उस समय में किसी भी भवन के लिए बहुत बड़ी बात थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्टेडियम में मनोरंजन के लिए योद्धाओं की खूनी लड़ाइयां होती थीं। यहां पर योद्धाओं को जानवरों के साथ लड़ाया जाता था। इस जगह को लेकर अनुमान है कि यहां करीब 10,00,000 से भी ज्यादा आदमी और 5,00,000 पशु मरे हैं। इसके अलावा कई पौराणिक कथाओं से संबंधित नाटक भी यहां आयोजित किए जाते थे। यहां पर एक साल में 2 बार भव्य आयोजन किए जाते थे जिसको रोमन लोग बेहद पसंद करते थे। कोलोसियम का इतिहास बहुत पुराना है। फ्लेबियन एम्पीथिएटर या कोलोसियम का निर्माण सम्राट वेस्पासियन के शासनकाल में शुरू हुआ। सम्राट वेस्पासियन ने कोलोसियम को रोम के लोगों के लिए एक उपहार के रूप में दिया, जो सम्राट नीरो के विनाशकारी शासन के बाद नाखुश थे। 80 ईस्वी में वेस्पासियन के बेटे तीतुस ने कोलोसियम का आधिकारिक अनुष्ठान किया और इसके उद्घाटन के लिए 100 दिनों के खेल का आदेश दिया। 3 साल बाद 83 ईस्वी में तीतुस के छोटे भाई ने निर्माण को पूरी तरह से अंतिम रूप दिया, लेकिन 217 में आग लगने से इमारत को नुकसान पहुंचा और इसकी लकड़ी की ऊपरी मंजिल पूरी तरह नष्ट हो गई। 5वीं शताब्दी के मध्य कोलोसियम में जंगली जानवरों के साथ योद्धाओं की लड़ाई की अंतिम रिपोर्ट है। हालांकि इसके बाद भी कुछ समय तक इसका प्रयोग जंगली जानवरों के शिकार के लिए किया जाता रहा। 6वीं शताब्दी के अंत में कोलोसियम का प्रयोग रोम के नागरिकों के मनोरंजन के लिए एम्पीथिएटर के रूप में नहीं किया जाता था। इसी समय इमारत में एक प्रार्थनालय जोड़ा गया और अखाड़े के फर्श का उपयोग कब्रस्थान के रूप में किया गया और इसकी सीटों के नीचे इमारत की दीवारों को बनाने वाले गुंबददार स्थानों का प्रयोग घरों और कार्यशालाओं के रूप में किया गया। 12वीं शताब्दी में उस समय के एक शक्तिशाली रोमन कुलीन फ्रंगीपानी परिवार ने उस भवन पर कब्जा किया और इसे एक किलेबंद महल में परिवर्तित कर दिया। 1349 में भूकंप से इमारत को गंभीर नुकसान पहुंचा और इसकी बाहरी दीवारों का एक पूरा हिस्सा ढह गया। इमारत के कुछ हिस्सों के गायब होने के रूप में हुई क्षति आज भी देखी जा सकती है। 1749 में सौभाग्य की बात यह है कि सदियों के क्षय के बाद पोप बेनेडिक्ट 14वें ने इमारत को पौत्र किया और घोषणा की कि इसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इस विश्वास के साथ कि अखाड़े में बहाए गए ख्रिस्त शहीदों के खून ने इससे एक पौत्र स्थल बना दिया है। उस समय से विभिन्न संत पापाओं, सरकारों और रोम शहर के प्रयासों से कोलोसियम का लगातार पुनर्निर्माण किया जा रहा है। मध्यकाल की शुरुआत में इस इमारत को सार्वजनिक कामों के लिए बंद कर दिया गया था और बाद में इसमें धार्मिक कामों के लिए और तीर्थस्थल के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। आज यह संरचना भूकंप की वजह से एक खंडहर बन चुकी है, लेकिन इस खंडहर को पर्यटकों के लिए अच्छी तरह से सजा कर रखा गया है। आज भी यह स्थान रोमन साम्राज्य के वैभव को बतलाता है। इस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया है। कोलोसियम में हर साल 7 मिलियन से ज्यादा पर्यटक आते हैं। यह इटली में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पर्यटक स्थल है और दुनिया की सबसे लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित इमारतों में से एक है। इसे अभी भी फ्लेबियन एम्पीथिएटर के नाम से भी जाना जाता है। 2000 से भी अधिक सालों पुराना होने के कारण लोग इसे दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित मानव निर्मित संरचनाओं में से एक के रूप में जानते हैं। इस तरह कोलोसियम न केवल एक ऐतिहासिक स्थान है बल्कि ख्रिस्त विश्वास को मजबूत करने वाला स्थान भी है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम रोम के विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक कोलोसियम के बारे सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
यीशु के लहू मसीहा के लहू, यीशु के लहू मसीहा के लहू, हे पावन लहू शुद्ध करो मुझे, आओ शुद्ध करो मुझे। यीशु के लहू मसीहा के लहू, अपने प्रेम से दे दो सजा के जीवन रूप हमें, अपने प्रेम से दे दो सजा के जीवन रूप हमें। हे यीशु अपनी आभा की उजली किरण से हमें। यीशु के लहू मसीहा के लहू, हे पावन लहू शुद्ध करो मुझे, आओ शुद्ध करो मुझे। यीशु के लहू मसीहा के लहू,
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका वर्तमान से उपजता भविष्य, लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, एक दंपति के लिए माता पिता बनना जीवन का सबसे पुरस्कृत व परिपूर्ण कर देने वाला अनुभव है। परिवार में बच्चों के लिए अपने माता पिता एक मॉडल, एक आदर्श होते हैं। अनायास ही बच्चे वही सीखते हैं और करते हैं जो उनके माता पिता करते हैं। अगर पिता घर में अपनी बीबी और बच्चों से ही मतलब रखे और परिवार के अन्य सदस्यों की परवाह न करे, अगर माता बूढ़े दादा दादी का ख्याल न रखे, उनकी टीका टिप्पणी करे, उनकी शिकायत करे, बूढ़े माता पिता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को न निभाए और परिवार के संस्कारों की अवहेलना करे, तो वो आशा करे कि उनके बेटे संस्कारी बने, बुढ़ापे में उनका सहारा बने। यह तो वैसे ही होगा जैसे बबूल के पेड़ से मीठे आम की आशा करना। ऐसे माता पिता को अपने बच्चों के खातिर खुद को व्यवहार में बदलाव लाना ही होगा, क्योंकि वर्तमान से ही भविष्य उपजता है। आशा है आज की नाटिका आपकी सोच में थोड़ा बदलाव लाएगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है माइकल होजेस की लिखी नाटिका वर्तमान से उपजता भविष्य।
आप कहाँ बाजार जा रहे हैं?
हाँ, क्यों?
क्या कुछ लेने जा रहे हैं या किसी काम से जा रहे हैं?
आज संडे है तो सोचा कुछ सब्जी वगैरह लाकर ही रख दूं, फिर हफ्ते में टाइम मिले ना मिले।
तो ऐसा करना, पीपल चक्की से आटा भी लेते आना और बनिए से राशन भी लेते आना।
लक्ष्मी, तुम भी एक ही हो। अरे जब बाजार से इतना कुछ लाना हो तो पहले ही बता दिया करो, ताकि एक एक काम रोज के निपटा सकूं। सब काम एक साथ ही बता देती हो तुम।
अरे मैं 3-4 दिन से रोज राशन मंगवाने का सोच रही थी, लेकिन घर के कामों में भूल भूल जाती थी।
तो अब से मान लो कि तुम बूढ़ी होने लगी हो, तुम्हारी याददाश्त कम होने लगी है।
अच्छा, मैं बूढ़ी होंगी तो क्या आप जवानी रहोगे? आप बूढ़े नहीं होंगे?
होंगा लक्ष्मी, होंगा। मैं भी बूढ़ा होंगा, लेकिन तुम्हारे बाद।
अरे रहने दो, बालों को रंग कर कोई जवान नहीं बन जाता, चेहरे की झुर्रियां राज खोल ही देती हैं।
अब आजकल के जमाने के हिसाब से तो रहना ही पड़ता है, वरना लोग एकदम ही बूढ़ा समझने लगेंगे। फिर अभी तो मेरे रिटायरमेंट में 12 साल बाकी।
हाँ, तब जाकर मेरा अकेलापन दूर होगा। आपकी ड्यूटी जाने के बाद तो मैं यहाँ बहुत अकेली हो जाती हूँ, और ये घर मुझे खाने को दौड़ता है।
क्या करें लक्ष्मी, हमारी किस्मत में ही औलाद होते हुए भी बे औलाद होना ही जो लिखा है।
अब अपनी बेटी स्वाति का मान सकते हैं कि उसे तो शादी करके जाना ही था, सो वह चली गई। लेकिन हमारा बेटा ललित भी हमें छोड़कर अपनी बीबी और बच्चे को लेकर चला गया है।
उसे भी ना जाने क्या सूझी। अगर बहू हमसे अलग ही रहना चाहती थी तो उसे लेकर इसी शहर में कहीं अलग रह लेता, लेकिन वह तो शहर छोड़कर ही चला गया है। अगर इसी शहर में रहता तो हमें कहने को ही कुछ सहारा तो हो जाता।
यह तो सब बहू की सिखाई पढ़ाई है, वही हमारे साथ तो क्या इस शहर में ही नहीं रहना चाहती। तभी तो ललित को भी लेकर उसका ट्रांसफर करवा कर चली गई है।
न जाने उसे यहाँ किस बात की कमी थी, या हमने उस पर कौन सी बंदिश लगाई थी। उसे तो हम बेटी की तरह रखते थे।
न जाने औरत और एक माँ होकर भी वे प्यार और ममता को क्यों नहीं समझ सकी।
शायद कुछ औरतें और माएं ऐसी भी होती हैं, लोग जिनका बुरा उदाहरण दे सकें।
मुझे माफ कर देना, ऐसी एक औरत और एक माँ मैं भी रह चुकी हूँ। सालों पहले मैंने भी आपको आपकी माँ से दूर कर दिया था, शायद यह उसी कर्म की सजा है।
मैंने तो अपने गृहस्थी बचाने के लिए तुम्हें उसी समय माफ कर दिया था लक्ष्मी। अब तो लगता है कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने अपने अतीत में ही अपने इस वर्तमान की नींव डाल ली थी। मेरा वही भविष्य आज मेरा वर्तमान बन गया है।
कभी कभी तो मुझे लगता है कि उनसे अच्छे तो वही हैं माँ बाप जिनके औलाद नहीं है, यानी कि बेटा नहीं है। कम से कम उन्हें हमारी हालत में होने का अफसोस तो नहीं होगा। काश हमारा भी बेटा ना होता तो उससे ये दूरी टीस बनकर आज साथ तो न रहती।
अब तो मैं भगवान से बस यही दुआ करती हूँ कि कोई भी बहू अपने पति को अपनी सास से दूर करने का कारण न बने।
ललित को हमसे दूर ही रहना तो रहे, लेकिन कम से कम अपनी खैरियत की खबर तो देता रहे। मगर उससे तो वो भी नहीं होता, और अब तो साल भर से उसका कोई फोन भी नहीं आया है, और हम फोन लगाते हैं तो कोई उठाता ही नहीं।
ये सब उस सौम्या की ही कारस्थानी है, जो अब हम अपने बेटे की आवाज सुनने को भी तरस रहे हैं।
बेटे से अच्छा तो जवाई है हमारा, जो बेटी के साथ साथ हमारा हालचाल पूछता रहता है और गाहे बगाहे हमारे यहाँ आता भी रहता है।
शायद हमारे समाज में आजकल सास ससुर की देखभाल की जिम्मेदारी दामादों ने उठा रखी है।
शायद तुम ठीक कहती हो लक्ष्मी, ललित भी उसी परंपरा का निर्वाह कर रहा है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ललित इस कदर स्वार्थी हो जाएगा।
सही कहा आपने, दुनिया में दो तरह के स्वार्थी होते हैं, एक वो जो पैदाइशी स्वार्थी होते हैं और हर जगह हर समय अपना स्वार्थ पूरा करने में लगे रहते हैं, और दूसरे वो जो किसी कारण या किसी लालच के कारण स्वार्थी बन जाते हैं। और हमारा ललित भी बनाया हुआ स्वार्थी है।
उसने तो कभी हमारी उम्र के बारे में भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा।
आपके तो और भी भाई थे जिन्होंने आपके माँ बाप को संभाल लिया था, लेकिन हमारा तो एक ही बेटा है।
लगता है अब वह केवल हमारी चिता को ही आग लगाने आएगा बस, और वह भी दुनिया को दिखाने के लिए।
आप दिल क्यों छोटा करते हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन हमारा बेटा जरूर लौट कर आएगा।
आखिरी समय में लौट कर आना भी क्या उसका लौटना होगा? उसकी जरूरत तो अभी है हमें। बाजार हाट हो, कोई जरूरी काम हो, नौकरी के साथ साथ सब मुझे ही करने पड़ते हैं।
आप क्यों इतने निराश हो रहे हैं? ललित को एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा और लौट कर वापस आएगा।
शायद वह दिन कभी नहीं आएगा। तुम्हारी प्रतीक्षा जीवन भर की प्रतीक्षा बनकर रह जाएगी। अब छोड़ो ये सब, राशन की लिस्ट और थैला थैली दो, मैं बाजार होकर आता हूँ।
अभी लाती हूँ। अरे ललित बेटा, तू आ जा। कितने सालों के बाद तूने माँ को चेहरा दिखाया है। अब याद आई है माँ की? आओ बहू, आओ। अरे सुनते हो, देखो तो कौन आया है।
जीते रहो बेटा, जीती रहो बहू। अरे ये चिंटू तो बहुत बड़ा हो गया है। आ बेटा, दादा के पास आ जा, बैठ।
कैसे हो अम्मा? बाबूजी, आप कैसे हैं?
हम दोनों तो ठीक हैं। तुम कैसी हो बहू?
ठीक हूँ अम्मा।
हाँ बेटा ललित, बहुत साल बाद आना हुआ। कितने दिनों के लिए आए हो?
क्या आप भी आते ही जाने की बात कर रहे हैं?
हम हमेशा के लिए यहाँ रहने आए हैं अम्मा।
हमेशा के लिए? सुना आपने ललित क्या कह रहा है?
हाँ बाबूजी, सौम्या कुछ प्रायश्चित करना चाहती है।
कैसा प्रायश्चित बेटा?
अम्मा, बाबूजी, मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने इनको आप लोगों से दूर किया, लेकिन अब मैं अपने उस पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। और यह भी चाहती हूँ कि कल को मेरा यह बेटा अपने बाप का इतिहास ना दोहराए।
मुझे खुशी हुई जानकर कि अपने बेटे को बड़ा होता देखकर तुमने ममता के महत्व को समझा है।
हाँ बेटी।
मैं जान चुकी हूँ कि हमारे वर्तमान से ही हमारा भविष्य उपजता है। यदि हम वर्तमान में अच्छे काम करेंगे तो हमारा भविष्य सुखमय होगा।
वाह बेटी,
सच कहा सौम्या। बुरे काम करते हुए हमें कोई देखे या ना देखे, लेकिन ईश्वर हमें जरूर देखता है और हमें हमारे कर्मों का फल देता है।
और ललित, तुम्हारी नौकरी?
मैंने यही ट्रांसफर करवा लिया है, क्योंकि अब आप लोगों को हमारी ज्यादा ही जरूरत होगी। फिर डाली पेड़ से लगी होने पर ही हरी रहती है, पेड़ से अलग कर देने पर वह सूख जाती है।
वाह, सही कहा बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ।
आज मेरी प्रतीक्षा भी पूरी हुई।
वर्तमान से उपजता भविष्य। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे कैथरीन फ्रांसिस, दिव्य शुल्य, प्रिंस फर्नांडिस और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।